एहेस्केल अध्याय 40। मैं सबसे पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि पूरी बाइबल में एहेस्केल की पुस्तक के इस भाग को मैं सबसे कम समझ पाता हूं। मैं ये नहीं दिखाना चाहता कि मुझे एहेस्केल के अध्याय 40 से 48 तक का पूरा पूरा ज्ञान है। सच तो ये है कि मुझे अन्य बाइबल गद्यांशों की तुलना में इसे समझने में सबसे अधिक कठिनाई होती है। यही कारण है कि मुझे इस भाग से प्रचार करने में बहुत कठिनाई होती है। मैं दानियल की पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने से रुक नहीं पा रहा हूं। मैं दानियल की पुस्तक को समझता हूं। एहेस्केल की पुस्तक में अब तक हमने जो किया है उसकी मुझे पूरी पूरी समझ है, परंतु इस अंतिम भाग को पढ़ते पढ़ते तो मैं खो ही जाता हूं। इसे समझाना भी आसान नहीं, क्योंकि ये मंदिर के नवनिर्माण का विवरण दे रहा है। इसके वर्णन से तो ऐसा लगता है कि यह मंदिर परमेश्वर के राज में होगा, अर्थात जब यीशु फिर से आएगा। ये वो मंदिर नहीं है जिसकी रचना में क्रिस्त विरोधी सहायता करेगा, ये प्रभु के राज में बनेगा। देखिए, यहां मंदिर का नक्शा दिया हुआ है। ये मंदिर चौकोर है जिसकी बाहरी दीवारें 500 हाथ अर्थात लगभग 750 फुट लंबी तथा 500 हाथ चौड़ी है। साधारणतः हमारे यहां एक हाथ की लंबाई का अर्थ है 18 इंच, परंतु यहां जो माप दिया गया है उसका एक हाथ 18 इंच और एक बिता 6 इंच होता है। इस प्रकार कुल लंबाई और चौड़ाई 1,000 फुट है, अर्थात इस रचना का कुल क्षेत्रफल 1,000,000 वर्ग फुट है। इसका अर्थ ये हुआ कि ये इमारत अच्छी खासी लंबी चौड़ी है। अब आता है भीतरी प्रांगण जो 100 वर्ग हाथ है अर्थात 400 वर्ग फुट, अर्थात ये भवन बहुत बड़ा है। इसकी एक दीवार से दूसरी दीवार की दूरी 180 फुट तथा 20 फुट 200 फुट की है। इस प्रकार ये प्रांगण 400 वर्ग फुट का है। इस प्रकार आपको भवन के पैमाइश का ज्ञान होता है। ये नया मंदिर बहुत बड़ा होगा। इसकी बाहरी दीवार 500 बास की थी अर्थात 1 वर्ग मील। आज यरूशलेम में और विशेष करके मंदिर स्थल पर तो इतना बड़ा क्षेत्रफल है ही नहीं। हेरोदेस ने जो मंदिर स्थल का विकास किया था वही 1 मील से कम है। सत्य तो यह है कि प्राचीन यरूशलेम ही लगभग 1 वर्ग मील है। अब यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि यीशु के आगमन से पूर्व पृथ्वी पर बड़ी ही प्रलयंकारी उथल पुथल होगी। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा है कि यरूशलेम का 1/10 भाग भूकंप से नाश हो जाएगा। अन्य और भी प्राकृतिक परिवर्तनों का इस पुस्तक में उल्लेख है। जैतून का पर्वत 2 भाग हो जाएगा और एक नई घाटी वहां बनेगी तथा इसके परिणाम स्वरूप एक नया पर्वत उभर कर आएगा जो सियोन पर्वत कहलाएगा। यशाया और यरमिया की भविष्यवाणियों के अनुसार ये पर्वत पृथ्वी पर सबसे ऊंचा होगा। नए मंदिर का निर्माण इसी पर्वत पर किया जाएगा क्योंकि उस पर जगह की कमी नहीं होगी। एहेस्केल को आत्मा ले जाता है और उसे उस मंदिर का दर्शन कराता है। एहेस्केल अध्याय 40 पद 1 और 2। हमारी बंदवाई के 25वें वर्ष 572 ईसा पूर्व अर्थात यरूशलेम नगर के ले लिए जाने के बाद 14वें वर्ष के पहले महीने अप्रैल के 10वें दिन को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और उसने मुझे वहां पहुंचाया। अपने दर्शनों में परमेश्वर ने मुझे इसराइल के देश में पहुंचाया और वहां एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया, जिस पर दक्षिण ओर मानो किसी नगर का आकार था। यरूशलेम में ये भावी पर्वत बहुत बड़ा होगा। एहेस्केल अध्याय 40 पद 3 और 4। जब वो मुझे वहां ले गया तो मैंने क्या देखा कि पीतल का रूप धरे हुए और हाथ में सन का फीता और मापने का बांस लिए हुए एक पुरुष फाटक में खड़ा है। उस पुरुष ने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखों से देख और अपने कानों से सुन, और जो कुछ मैं तुझे दिखाऊंगा उस सब पर ध्यान दे, क्योंकि तू इसलिए यहां पहुंचाया गया है कि मैं तुझे ये बातें दिखाऊं। वहां उसे एक मनुष्य मिलता है जो उससे कहता है कि वो जो कुछ दिखाएगा उसे वो ध्यान से देखें, क्योंकि उसे वहां ले जाने का उद्देश्य यही था। एहेस्केल अध्याय 40 पद 4 में आगे लिखा है, और जो कुछ तू देखें वो इसराइल के घराने को बताए। यहां ध्यान दीजिए कि ये प्रभु के राज्य और इसराइल की भविष्यवाणी है, ना तो ये मंदिर और ना ही इसकी आराधनाएं कलीसिया के लिए है। एहेस्केल अध्याय 40 पद 5 और 6। और देखो, भवन के बाहर चारों ओर एक भीत थी, और उस पुरुष के हाथ में मापने का बांस था, जिसकी लंबाई ऐसे 6 हाथ की थी जो साधारण हाथों से 24 भर अधिक है। सो उसने भीत की मोटाई मापकर भास भर की पाई, फिर उसकी ऊंचाई भी मापकर भास भर की पाई। तब वो उस फाटक के पास आया जिसका मुंह पूर्व की ओर था। मंदिर के पूर्व में एक द्वार है जिस तक पहुंचने के लिए 7 सीढ़ियां हैं, परंतु ये द्वार एक गलियारा है, क्योंकि इसके दोनों ओर कमरे हैं। फिर वहां पत्थरों का फर्श है जो मेहराबदार देवड़ियों से ढका है, और उन मेहराबों और खंभों पर चित्रकारी है जिनमें करूबों की नक्काशी भी है। एहेस्केल अध्याय 40 पद 27 में दक्षिण की ओर भीतरी परिसर है जिसमें 3 और द्वार हैं। इन तीनों द्वारों के सामने बाहरी परिसर के 3 द्वार हैं। वहां चढ़ने के लिए भी 7 सीढ़ियां हैं, तब 8 सीढ़ियां चढ़कर भीतरी परिसर है। इस प्रकार आप ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। मंदिर का भवन अभी और भी ऊंचा है। अब यहां ध्यान दीजिए कि पश्चिम की ओर कोई द्वार नहीं है, पर पूर्व, उत्तर और दक्षिण में है। इस प्रकार प्रवेश मार्ग है। इन द्वारों से बाहरी परिसर में चढ़कर आना, तदोपरांत चढ़कर भीतरी परिसर में प्रवेश। भीतरी परिसर में सबका आना मना है। वहां केवल वे ही आ सकते हैं जिन्हें बलिदान चढ़ाना होता है। भीतरी परिसर के मध्य में होम बलि की वेदी है। पश्चिम में मंदिर का भवन तथा उसमें पवित्र स्थान है। पवित्र स्थान की लंबाई 20 फुट तथा चौड़ाई 20 फुट अर्थात 400 वर्ग फुट की है। यहां ध्यान दीजिए कि नाप 12 या 12 का गुणफल है। इसका अर्थ यह है कि 12 का कोई महत्व अवश्य है, परंतु वो है क्या, ये मैं नहीं जानता। अनेक जन वचन से अपना अर्थ निकालते हैं। मैं तो ऐसा नहीं कर सकता, मैं तो वही पढ़ता हूं जो लिखा है। इसका महत्व तो मैं नहीं जानता, परंतु मैंने ध्यान दिया है कि वहां 12 का आंकड़ा है।